करके सीखा जा सकता है, जो किताबी ज्ञान नहीं है। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो किताब से नहीं होगा, गुरु के पास से बैठने से होगा? तो उपनिषद जो जो शब्द की जो एटिमोलॉजी है, स्लाइड चलाएंगे, उप प्लस नी प्लस सद। सद का अर्थ होता है टू सिट, बैठना, टू डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस, टू अटेन प्योर नॉलेज एंड टू लूजन द कैच ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये तीन अर्थ सद धातु में, उपनिषद में जो सद रूट है उसके तीन अर्थ होते हैं कि ऐसा ज्ञान जिसको पाने से अज्ञान मिटता है। बोले अज्ञान तो हमारे बड़े सारे बुक से मिटता है, दुनिया में जितने तरह के हमारे पास नॉलेज है वो दुनिया को समझने के लिए है, पर खुद को समझने के लिए जो ज्ञान है उसे वेद में ज्ञान कहा जाता है। हम धरती से बाहर भी अलग अलग प्लैनेट्स में, ग्रहों में क्या होता है ये जानकारी तो हम रखते हैं। अब समुद्र की गहराई में क्या है ये भी हम पता लगाते हैं, पर समस्या है कि जितना जितना हम बाहरी दुनिया का ज्ञान करते हैं उतने खुद के बारे में कम जान पाते हैं कि मैं कौन हूं। तो जिससे मैं खुद को जान पाऊं, खुद की अज्ञानता मिटे, उसी का नाम उपनिषद है। उपनिषद को दूसरे शब्द में वेदांत कहते हैं। ऐसे वेदांत का बड़ा आजकल प्रचलन है। वेदांत का अर्थ होता है वेद का अंत, द एसेंस ऑफ वेदास, द एंड ऑफ वैदिक लिटरेचर। जो वेद ज्ञान का आधार है और जो अंतिम ज्ञान होता है, जो सार, जब आदमी सब कुछ समझ जाता है तो आखिर में वो खुद को जान पाता है। जिस दिन वो खुद को जानता है फिर नथिंग लेफ्ट टू नो एनीथिंग एल्स, और कुछ बचता नहीं है जानने के लिए। दूसरा, उपनिषद को इसीलिए वेदांत कहते हैं क्योंकि अध्यात्म ज्ञान का विषय है। दूसरा कारण, इसीलिए उपनिषद को वेदांत कहते हैं क्योंकि जो वैदिक साहित्य है जिसमें चार तरह के ग्रंथ आते हैं, संहिताएं जिसे आप ऋग, यजु, साम, अथर्व कहते हो, फिर उनकी व्याख्या ग्रंथ कमेंट्री के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण कैस्ट नहीं, ग्रंथों का नाम है, सैकड़ों ग्रंथ है। उसके बाद सेकेंड में आरण्यक आते हैं, तो थर्ड वन, फोर्थ वन इज उपनिषद जो अध्यात्म ज्ञान का मूल है। उन उपनिषदों में, वैसे तो आज 200 से ज्यादा उपनिषद उपलब्ध हैं, पर 12 उपनिषद प्रमुख माने जाते हैं। उनमें जिस उपनिषद की चर्चा हम करने जा रहे हैं उसका नाम है कठोपनिषद। कठ ऋषि के द्वारा बताया गया, लिखा गया उपनिषद कठोपनिषद है। वैसे तो जो उपनिषद है, जीवन की रहस्य, जीवन के रहस्य को समझने के लिए ये एक यूनिक, एक अनूठा ग्रंथ होते हैं, और कठोपनिषद इनमें ज्यादा ही अनूठा है। उसकी अनूठापन इसीलिए है, कहानी शुरू होती है, नचिकेता नाम का एक 8 साल का लड़का है, वो मृत्यु के पास पहुंचता है, मौत के पास, और मौत से उसके सवाल जवाब होता है। वो कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है, आप सुनेंगे। और मृत्यु उसको बताता है कि मरने के बाद होता क्या है, जीवन जो लाइफ है उसको जानने के लिए मरना जरूरी है, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है वो जीते जी तो हम जान नहीं सकते, इसीलिए जीवन को ठीक से जानने के लिए मौत के अंदर घुसना जरूरी है, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय है भी नहीं है। मृत्यु मतलब पुराना को छोड़ना, नए को पकड़ना। हमारे यहां मरना कोई अंत नहीं है, जैसे गीता में आप पढ़ते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे बाजार से आप कपड़े खरीदते हैं, फट जाता है, पुराना हो जाता है, छोटा पड़ जाता है, फेंक देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। इसी तरह आत्मा जब शरीर को छोड़ देता है तो आप उसको मौत कहते हो, जो नए शरीर लेता है तो आप उसको जन्म कहते हो। मरने पर ही जीवन का रहस्य समझ में आता है। फिर कहेंगे हम तो कितने बार मर चुके हैं, लाखों करोड़ों बार मरे, क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र तो चला है, हमें तो कुछ पता नहीं चला है। सिर्फ मर जाने से किसी को जीवन का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जब हम मरते हैं ना, मरना हमारे लिए जबरदस्ती होती है, हम कोई चाह कर नहीं मरते। हम जब से पैदा होते हैं हमें जो डर है, जो हमारे शास्त्रों में जो डर का डेफिनेशन है, आप पढ़ाई से डरिए, आदमी से डरिए, कुत्ते से डरिए, किसी से भी डरिए, डर का डेफिनेशन हमारे यहां है कि मौत का जो खौफ है, जो हमारे अनकॉन्शियस में, जो सबकॉन्शियस में जमा हुआ है, वही हमें अलग अलग रूप में आता है, इसी को हम डर कहते हैं। क्योंकि डर एक, मौत एक दर्दनाक घटना है, बड़ी पीड़ा देने वाली है, इसीलिए जब हम मरते हैं, मरने से पहले बेहोश होते हैं, होश में कभी नहीं मरते, पैदा भी कभी होश में नहीं होते हैं। क्योंकि पैदा होना और मरना दोनों बहुत दर्दनाक है। और वो आजकल तो मॉडर्न साइंस ने एनेस्थेसिया देना शुरू किया, जब आपको सर्जरी करते हैं, काटते हैं कि दर्द ना हो। हमारे ऋषि पहले से समझते थे, और सबसे बड़ी दो दर्द, ईश्वर सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा सर्जन है जो एनेस्थेसिया देता है, जो मरने से पहले ही आपको बेहोश करता है। आप बेहोशी में मरते हैं, बेहोशी में ही पैदा होते हैं। हम सब पैदा हुए हैं, किसी को पता है कि वो पैदा हुआ था? आप कहेंगे हमें पता है, आपने सुना है, आपके मां बाप ने, दोस्तों ने आपको कहा कि आप पैदा हुए हो। आपको पता है पैदा होते समय क्या इंसिडेंट आपके साथ हुआ था? किसी को नहीं पता। हमने सिर्फ सुना है, दूसरों से जाना है, दूसरों को देखा है, खुद के जन्म को हम नहीं जानते, क्योंकि जब हम पैदा हो रहे थे तब हम बेहोशी में थे, क्योंकि वो इतनी दर्दनाक हालत है कि ईश्वर बेहोशी में ही पैदा करता है। ठीक इसी तरह जब भी मरते हैं पहले बेहोशी में मरते हैं। ज्ञान कब होता है? जब आप होश में होते हैं। आपके सामने पेड़ है तब भी आपको नहीं दिखता, अगर आपका ध्यान और कहीं है, अगर आप बेहोशी में, आप अनकॉन्शियस है तो आपको नहीं दिखेगा। मेरे मरने के बाद या मेरे पैदा होने से पहले मैं था, नहीं था, किस रूप में था, भालू था, गधा था, कीड़ा था, पेड़ था या नहीं था, लाखों सालों से जो सवाल उठता है, जिसकी जानने की मैं कोशिश करता हूं, मेरी समस्या है कि वो, उसको जानने के लिए मेरे पास दो पुल है। एक तो जन्म का, या तो मैं जन्म से पहले जानूं या मौत के बाद जानूं। इसीलिए मुझे जन्म और मृत्यु से परे जाना पड़ेगा जानने के लिए कि मैं क्या हूं। पर समस्या है कि जब मैं पैदा होता हूं या मरता हूं तब मैं होश में नहीं होता हूं, क्योंकि मैं होश में नहीं होता हूं तो उस प्रक्रिया को मैं जान नहीं पाता हूं, और जब मैं पैदा हो चुका होता हूं तब मेरा होश आता है, तब सब कुछ हो चुका होता है। जब मैं मर चुका होता हूं तब मैं और किसी के वहां पैदा होता हूं तब मुझे होश होता है, क्योंकि हम जन्म के समय भी मृत्यु के समय भी बेहोशी में होते हैं, इसीलिए हमें पता नहीं होता कि मरने के बाद जीवन एक्चुअली होता क्या है। होश का मतलब क्या है? होश का मतलब है, होश में मरने का मतलब है, जिस दिन हम होश के साथ मरेंगे, चेतना के साथ मरेंगे, उस अवेयरनेस के साथ मरेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मरने के बाद होता क्या है। होश के साथ मरने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये पता करना कि मरता कौन है, और जिस दिन आपको ये होश हो जाएगा मौत क्या है, उस दिन आपको मौत आएगी ही नहीं। आपको पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन आपको होश होगा कि मौत क्या है मौत के समय, तो उस दिन आपको पता होगा कि आप मर ही नहीं सकते हो, आप अजर हो, अमर हो। और जो मरता है वो आप नहीं हो, वो आपकी बॉडी है, वो आपका शरीर है, वो आपका देह है। इसी को ऋषि मुनि कहते हैं निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, मोक्ष। ये एहसास, ये होश कि मैं जो हर पल मरता हूं, हर पल मेरा शरीर बदलता है, मैं उसी तरह हूं। जो मरता है वो शरीर है, मैं अमर अजर हूं। जो भी मर सकता है, जहां तक मौत है वहां तक मैं नहीं हूं, और जहां मौत नहीं है वो मैं हूं। और जिस समय आपको ये होश होगा फिर आपकी मौत से छुटकारा मिल जाएगी। मतलब तो आप कहेंगे ऐसा कोई आदमी दिखता है जो अभी तक मरा नहीं है? ध्यान रखिए, ना मरने के लिए एक ही शर्त है कि आप पैदा मत होइए। अगर पैदा हुए हैं तो मरना पड़ेगा। तो फिर आपने कैसे कहा कि होश के साथ मरो तो पैदा नहीं होना होगा, मरना नहीं होगा? क्योंकि आप पैदा ही नहीं होंगे। इसी को मुक्ति कहते हैं। जन्म और मृत्यु से जब तक आप पैदा होते रहिए, आप मरते रहेंगे, मरते रहेंगे तो पैदा होते रहेंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु मृतम जन्म ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो मरता है वो पैदा होता है, जो पैदा होता है वो मरता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जिस दिन आपको अपने उस अमर सत्ता का ज्ञान होगा, वैसे हर आदमी को ज्ञान होता है, जो नास्तिक है उसको भी, जब हमारा कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो हम बोलते हैं फोन करके, पापा चले गए, दौड़े दौड़े रिलेटिव से आते हैं, ये क्या है, ये तो उनका बॉडी है, शरीर है, कल तक तो कह रहे थे यही पापा है, आज कह रहे बॉडी है, दैट मीन समथिंग इज मिस्ड, कुछ गायब है। मतलब अभी तक हम जिसको पापा कह रहे थे वो पापा का बॉडी था, शरीर था, अब क्योंकि वो नहीं है आप कह रहे हो इसको जला दो, दफन कर दो। अब आपको कोई दया नहीं आती है जब उस बॉडी को आप जलाते हो, दफन करते हो, क्यों? आपको पता है कि वो पापा नहीं है, ये तो उनका शरीर है। जो मैं हूं, मुझे कोई मौत की तूफान उड़ा नहीं सकता, कोई पानी का बाढ़ मुझे डुबा नहीं सकता, आग मुझे जला नहीं सकता। जब होश में होने का मतलब है होश मतलब ज्ञान, सही ज्ञान कि मैं अमर हूं, जो मरता है वो मेरा शरीर है। मैं जिसको मैं कहता हूं मैं, ये दो चीजों का जोड़ है, एक मैटर है, एक कॉन्शियस है, एक शरीर है, एक आत्मा है। मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मुर्दा शरीर ना बाप होता है ना बेटा होता है, ना मां होती है ना बेटी होती है, वो जलाने लायक होता है। मैं आत्मा नहीं हूं, क्योंकि खाली आत्मा ना खा सकता है ना पी सकता है ना बोल सकता है, क्योंकि उसका हाथ पैर तो कुछ होता नहीं है। मैं शरीर जमा आत्मा हूं। जब शरीर और आत्मा मिलते हैं तो मेरा जन्म होता है, दोनों जब अलग हो जाते हैं तो फिर मेरी मृत्यु होती है। ये शरीर जड़ है, मैटर है, पर हमेशा लगता है कि यही चेतन है। ये शरीर आत्मा का अंदर का रिफ्लेक्शन है। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, आप अपने को नहीं देखते हैं, जो शीशे में है वो आप नहीं है, वो आपकी छवि है। और शीशे में वो छवि तब तक है, वो रिफ्लेक्शन तब तक है जब तक आप उस मिरर के शीशे के सामने खड़े हैं। मतलब शीशा आपका प्रतिबिंब है। अगर आप बदसूरत हैं तो शीशे में खूबसूरती नहीं आएगी, अगर आप खूबसूरत हैं तो शीशे में बदसूरती नहीं आएगी, अगर आप इंसान हैं तो शीशे में गधा नहीं आएगा, अगर आप गधे हैं तो शीशे में इंसान नहीं आएगा। जो है वही शीशे में रिफ्लेक्ट करता है। शरीर अगर कुछ आपको लगता है कि शरीर कुछ है, वो अंदर का रिफ्लेक्शन है। जब वो अंदर हट जाता है कोई, जैसे शीशे के सामने से आप हट जाते हैं तो शीशे में कुछ नहीं है, इसी तरह शरीर के अंदर से कोई हट जाता है फिर शरीर किसी काम का नहीं। जो आपको बुखार होता है, फोड़े फूसी होते हैं, ये रोग नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी के सिम्टम है। आपके अंदर कुछ गड़बड़ है जिसके कारण आपको बुखार हो रहा है, आपको फोड़े फूसी हो रहे हैं, आपको सरदर्द, आपको कहीं दर्द हो रहा है। शरीर में कहीं दर्द होता है वो बीमारी नहीं होती, ये आपके अंदर कुछ गड़बड़ी है, कुछ चल रहा है, उसका ये रिफ्लेक्शन है, उसका सिम्टम है। इसी तरह बॉडी आत्मा का, शरीर आत्मा का प्रतिबिंब है कि अंदर कुछ है। अगर अंदर आपका सब कुछ कुछ भी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ना आपको फोड़ा ना फूंसी ना बुखार ना दर्द कुछ नहीं होगा, कोई सिम्टम आएंगे ही नहीं। इसी तरह अगर इस शरीर में वो आत्मा ना हो, कोई चीज ना हो, तो शरीर में कोई लक्षण नहीं दिखेगा, ना ये आंखें के पत्ते हिलेंगे, ना हाथ हिलेगा, ना बोल पाएंगे, ना मुंह खुलेगा, ना मुस्कुराएंगे, ना रोएंगे, कुछ नहीं। क्योंकि शरीर में ये सब हो रहा है तो हमें लगता है कि मैं शरीर हूं। जैसे शीशे में क्योंकि दिख रहा है, लगता है शीशे के अंदर कोई है। जैसे वो बचपन में आपने वो पंचतंत्र की कहानी सुनी होगी, वो चालाक खरगोश को खाने के लिए शेर दौड़ा, तो खरगोश को कुछ सूझा नहीं, उसने देखा एक जगह कुआं है, दौड़े दौड़े कुएं के पास खड़े होकर देखा तो उसका शकल दिखा। उसने दाकर शेर को बोला कि कुएं के अंदर भी एक शेर है। अच्छा, तो शेर दौड़े दौड़े आया, मेरे जंगल में मेरे अलावा दूसरा शेर कहां से आएगा। उसने कुएं में देखा, सचमुच उसके अंदर एक शेर था। उसको बड़ा गुस्सा आया, वो गुर्राने लगा। जैसे ही गुर्राया, कुएं वाला शेर भी गुर्राने लगा, बिल्कुल वैसे ही गुर्राने लगा। उसको और गुस्सा आया, उसने झांप मारने की कोशिश की तो अंदर का कुआं भी बिल्कुल वैसे ही किया। आखिर में शेर कूद ही पड़ा कुएं में। हमारा जीवन इसी तरह का है। शरीर के कुएं में जो शेर का रिफ्लेक्शन है, उसी को सच समझ बैठते हैं, और उसी के हिसाब से जीवन चलाते हैं। जो आप 12:30 बजे लेक्चर सुनेंगे वो भी यही है, जो एडिक्शन है शरीर के साथ, जब हमारा होश का एडिक्शन हो जाता है, एक इतना लगाव हो जाता है कि फिर हम भूल जाते हैं कि मैं और कुछ भी हूं। फ्रिज में जिलेबी देखी नहीं कि आप भूल गए कि मुझे डायबिटीज है। शरीर में हलचल हुआ नहीं कि मैं भूल गया कि मैं और भी कुछ हूं, जो कुछ करूंगा शरीर के लिए। शरीर सिर्फ अंदर का आवाज है। मौत में घुसने का मतलब है कि शीशे से, दर्पण से हट करके खड़ा होना, अपने आप को शरीर से अलग देखने की कोशिश करना। यही कठोपनिषद की का सार है जिसकी चर्चा हम करेंगे, और इसकी चर्चा शुरू होगी एक बहुत ही प्यारी छोटी सी कहानी से। वाजश्रवा नामक ऋषि हवन करता है, यज्ञ करता है, उसमें सब कुछ दान करता है। वो दान में अपनी बुढ़ी बुढ़ी गायें जो हैं, घर का जो बेकार की चीजें वही दान में देता है, जैसे बहुत सारे लोग करते भी हैं। नचिकेता बच्चा है, उसको बुरा लगा, ये क्या बुढ़ी गाय है इसलिए दान में दे रही है, मेरे पापा काम का नहीं है इसीलिए, तो मैं भी तो छोटा बच्चा हूं, मैं भी काम का नहीं, कोई मुझे तो कहीं दे नहीं देंगे। पूछा, आप मुझे भी दोगे क्या किसी को? पापा ने जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछा, 3 बार पूछा, पापा को गुस्सा आया, तुझे मौत को दूंगा। ये कठ की स्टाइल है, उपनिषद की एक स्टाइल है कहानी के द्वारा उस तत्व ज्ञान को बताने की। वो आपको अभिभूत करने वाली कथा है और आपके अंदर उतरने वाला ज्ञान है, उसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। आज सिर्फ इसकी एक भूमिका आपके सामने रखी। ओम शांति।